बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 25 मार्च दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। उत्तर प्रदेश में बूटड़खानों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई, मांस के व्यापार पर निर्भर लाखों मुसलमानों, दलितों और दूसरे समुदायों का क्या होगा? मुख्यमंत्री बनते ही आदित्यनाथ योगी के इन फैसलों पर क्या है आपकी राय? इंडिया बोल में आज चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। इस विषय पर चर्चा करने और दलितों का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय बहादुर पाठक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। इराक के मोसुल शहर के लोगों के मुताबिक एक हवाई हमले में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हुए हैं। मोसुल के नज़दीक मौजूद बीबीसी संवाददाता को एक महिला ने बताया कि उसके परिवार के 9 सदस्यों की इस हमले में मौत हो गई और इसी हवाई हमले में ध्वस्त हुई एक इमारत में अभी भी बहुत लोगों के शव मौजूद हैं। मोसुल को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराकी सेना का समर्थन कर रही अमरीकी सेना यहाँ लगातार हवाई हमले कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चरमपंथी आम लोगों को ढाल बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अपने शहर गोरखपुर पहली बार पहुंचे। वहां एक रैली में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की नई सरकार सबका विकास करेगी और किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब राज्य में गुंडाराज खत्म होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वालों को 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनने के बाद से सड़क से गड्ढे हटाने के लिए आदेश दे दिए हैं। उनके मुख्यमंत्री बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने और गैरकानूनी बूचड़खानों को बंद करने के फैसले दिए गए, जिस पर काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने इस रैली में ये कहा,
संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए।
ये थे योगी आदित्यनाथ, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में हवाई हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। ब्रिटेन आधारित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि ये हवाई हमला दमिश्क के हुमेरिया इलाके की मुख्य सड़क को निशाना बनाकर किया गया है। इसके अलावा इदलिब प्रांत में एक जेल पर हवाई हमले में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग हमले के बाद भागने की कोशिश कर रहे थे, तब इन्हें गोली मार दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने चुनावी वादे पूरा करने की राह में एक और तगड़ा झटका लगा है। उन्होंने चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति की स्वास्थ्य नीति ओबामा केयर को वापस लेने का वादा किया था। ओबामा केयर में सुधार के प्रस्ताव पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग होनी थी, लेकिन रिपब्लिकन नेताओं से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने की वजह से इसे वापस लेना पड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए डेमोक्रेट नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस मामले में हार को स्वीकार करते हुए कहा कि अब वो अपना ध्यान कर सुधारों में लगाएंगे। ओबामा केयर पर वरिष्ठ रिपब्लिकन सेनेटर जॉन मैकिन ने ये कहा, 2009 में रिपब्लिकन नेता इस बात से नाराज थे कि ओबामा केयर के बारे में चर्चा किए बगैर ही इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट में पास करा लिया गया था, लेकिन अब बेहतर समय है कि डेमोक्रेट नेता इस बात को समझें कि इसके कुछ हिस्सों पर सहमति बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी भी ओबामा केयर बदतर हालत में है और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस पर सहमति बनाना आसान नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। ये थे जॉन मैकिन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। गजा पट्टी में हमास मूवमेंट से जुड़े एक कमांडर माजिन फाका के जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए और उनकी मौत का बदला लेने की मांग की है। शुक्रवार को गजा शहर में उनके घर के पास उनको गोली मार दी गई थी। हमास ने इस हत्या के लिए इजरायली एजेंटों को जिम्मेदार ठहराया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बीबीसी इंडिया बोल। मैं हूं संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं। एक बार फिर बताते हैं आपको, टोल फ्री नंबर 1811-7000 और 1811-7001। विषय इस बार निकल कर आया है उत्तर प्रदेश से, जहां 19 मार्च को आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ एक मामलों में बड़ी फुर्ती दिखाई है और इसी क्रम में बीते 3-4 दिन से समूचे उत्तर प्रदेश में कई बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि वो अवैध थे और इनमें वो छोटी मोटी दुकानें भी शामिल हैं जो रिहायशी इलाकों में सड़कों के किनारे लगी होती हैं, जिन पर चिकन और मछली वगैरह मिलते हैं। मैं सोशल मीडिया में कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा, लगता है जैसे गेहूँ के साथ घुन भी पिस गया। बहरहाल, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के इस फैसले और इससे जुड़े तमाम दूसरे मुद्दों पर श्रोताओं से बात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन पहले परिचय कराते हैं आपका दो मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक लखनऊ से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सतीश प्रकाश। आपकी राय और तर्क इस पूरे मामले पर सुने। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक साहब, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहला सवाल सीधे आपसे, जिसका जवाब आप नहीं देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, बूचड़खानों को बंद करने के पीछे क्या नीति है और क्या राजनीति है?
संदीप जी, पहली चीज तो मैं जवाब नहीं देना चाहूंगा, ये मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें यदि जनादेश दिया है और जाहिर बात है उसके जो सवाल है उन सवालों का उत्तर हमें देना पड़ेगा, और हम भेज गए हैं कि हमें इसको देना चाहिए। आपका जो मूल सवाल है, बात आती है अवैध बूचड़खानों की। आपने खुद कहा कि पिछले 4-5 दिनों से उत्तर प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां हैं, और आप बताइए कि किसी भी राज्य में अवैध रूप से पशु कटान हो, क्या वो राज्य के हित में है? और अगर राज्य के हित में नहीं है तो जिस पुलिस के संरक्षण में यह काम हो रहा था उस पुलिस को इसे बंद कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? और कराना चाहिए तो हमने यही मंशा व्यक्त की है कि राज्य की पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर के उन कामों को करे जो उसकी जिम्मेदारी है। कई बार उस पर यह आरोप लगते रहे कि उसके संरक्षण में राज्य में अवैध खनन हो रहा है।
जी विजय बहादुर पाठक जी, आप कार्यक्रम में बने रहें। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे सामने स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सहमत हैं विजय बहादुर पाठक जो कह रहे हैं?
नहीं, पाठक जी ने अपना पक्ष रखा है। देखो, बेसिकली जो है ना, चूंकि पाठक जी जो है बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं तो वो सच्चाई तो बोलेंगे नहीं, सच्चाई कुछ और है। पाठक जी, ये किस तरह का व्यवहार है आपका जो है एक पूरे प्रदेश में? चलिए, इलेक्शन से पहले आपने मुस्लिम्स को लेकर के क्या भी कुछ भी किसी भी तरह का बयानबाजी रही हो चाहे, है ना, लेकिन अब तो आपके मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। उनका जो व्यवहार है, वो पिछले जब से वो ये बने हैं मुख्यमंत्री, उनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि प्रदेश का एक बहुत बड़ा, जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा के अंदर भय का माहौल पनप गया है।
पाठक जी,
संदीप जी, मेरा ये कहना है कि ये बात शुरू करते समय ही उन्होंने कहा कि मैं सही सच नहीं बोलूंगा।
नहीं,
आपके सामने
बिल्कुल गलत बात
है और ये सही बोलेंगे।
बिल्कुल नहीं,
और मैं गलत बोलूंगा
ना? आप गलत बोलेंगे ना ये गलत बोलेंगे, दोनों अपनी बात रखेंगे। रखिए अपनी बात,
अपनी बात रखिए।
जी जी,
बात तो समझ में आती है, लेकिन दूसरे के बारे में जब आप टिप्पणी करते हैं तो यह जो मानसिकता है
जी प्रोफेसर साहब, आप
मानसिकता का विरोध होना चाहिए, क्योंकि
इसमें
लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अपना पक्ष रखना।
बिल्कुल, आपको अपनी बात रखने का आगे भी बहुत मौका मिलेगा।
प्रगतिशील के नाम पर ऐसी विडंबना पाल दिए हैं तो सुनना ही नहीं चाहते।
नहीं, सुनेंगे, दोनों सुनेंगे, हम आपकी बात भी सुनेंगे। प्रोफेसर साहब, आप भी ध्यान से इनकी बात सुनिए। और हम सुनते हैं पहले श्रोता 1811-7000 और 1811-7001 पर इस वक्त कौन श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
जी, हमारा नाम प्रेम कुमार सिंह है।
प्रेम कुमार जी, बेगूसराय बिहार से बोल रहे हैं, रखें अपनी बात।
सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं इन लोगों से, जो लोग किसको फेंकते हैं, जो अनुपयोगी चीज होता है जीवन में। और अभी हिंदू और मुसलमान सब मिलाकर लाखों आदमी अभी इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। कोई गाय खरीदते हैं, बहिला गाय को खरीदते हैं, जो बच्चा नहीं देता है, दूध नहीं देता, उस गाय को खरीदते हैं। खरीदने वाले हिंदू हैं, खरीदने वाले मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन वो खटाल में जाता है, वो खाते हैं।
चलिए, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई, और देखते हैं और देखते हैं अगले श्रोता कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, बहरहाल लगता है कुछ गड़बड़ है तकनीकी। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, देते रहे हैं, सबकी बेहतरी की बात करते हैं, हर हाथ को रोजगार का वादा करते हैं। विजय बहादुर पाठक जी, ये सवाल आपके लिए कि क्या उत्तर प्रदेश में बूटलखाने बंद करके रोजगार देने के बदले आप रोजगार छीन नहीं रहे? लाखों लोग लगे हैं इस काम में,
जा रही हैं। मैंने आपकी इस पूरी परिचर्चा के प्रारंभ में मैंने कहा कि पहले ही लगा हुआ है अवैध बूटलखाने। क्या किसी राज्य के हित में है कि वह काम जो अवैधानिक ढंग से चल रहा है उस काम को सरकार चलने दे? और अगर नहीं चलने दे, क्या यह काम रोका जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर एक देश में व्यवस्था है और बूटलखानों के लाइसेंस मिलते हैं, सरकार व्यवस्था बनाती है, लाइसेंस फीस जमा करती है, उसके तय मानक है, उन तय मानकों के अनुसार बूटलखानों के लाइसेंस दिए गए हैं।
बिल्कुल,
ऐसा तो है नहीं, नहीं दिए गए।
ये लाइसेंस वाले सवाल पर हम आएंगे। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, यहाँ आपसे ये समझना चाहेंगे कि मांस से जुड़ा है चमड़ा, ये मांस और चमड़े का जो उद्योग है अर्थव्यवस्था के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें किसी तरह की उठापटक होती है तो वो कौन कौन से लोग हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ता है?
नहीं देखिए, ऐसे देखिए, ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं बड़ा सोच समझ के जो इनके रणनीतिकार हैं, क्योंकि इनका इनको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो एक तो दलित समाज और एक मुस्लिम समाज जो है उसको राजनीतिक रूप से पहले अलग किया, ठीक है ना, और जब उसको ये दिखाया है पूरा उस इलेक्शन का जो पूरा सिनेरियो है, कहीं ना कहीं उसमें ये है कि जो मुस्लिम्स और दलित वोट जो है अगर हमको ना भी मिले तो भी हम सरकार
वो एक अलग है, उस पे हम आएंगे। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अर्थव्यवस्था बताइए,
अर्थव्यवस्था में
ये जो मांस और ये मांस चमड़े का उद्योग है,
जितना भी उद्योग है, ये पूरा जो मांस का जो उद्योग है इसको अगर पूरे देश के लेवल पर आप देखें तो लगभग 30,000 करोड़ का ये व्यवसाय है, जिसमें 27,000 करोड़ रुपए का मीट आप एक्सपोर्ट करते हैं और 3,000 करोड़ रुपए का जो मांस है वो आप देश में उसकी खपत है।
छोटे बड़े तमाम लोग।
और इसमें जो अगर इसमें चमड़े को अगर देखें, ये तो मांस का है, अगर चमड़े की अर्थव्यवस्था देखें तो हमारे इस देश में जो है इसका अगर टोटल टर्नओवर निकालें तो ये लगभग 6-6.5 हजार करोड़ रुपए का ये व्यवसाय है।
और किन लोगों
नहीं इसमें बेसिकली
असर है यदि कुछ गड़बड़ होती है?
नहीं नहीं, देखो जहाँ बूचड़खाने वाला जो काम है वो तो मुस्लिम मैक्सिमम मुस्लिम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है चमड़े का तो व्यवसायिक जो पुस्तैनी काम है वो दलितों का है। और दलित व्यवस्था जो है, देखिए आपने, मैं ये नहीं कह रहा कि कल आपने भले ही अपनी गंदगी उठवाने के लिए उनको ये जबरदस्ती काम दिया हो, लेकिन उसमें उन्होंने इतनी महारत हासिल की कि आज उन्होंने उसको अपना एक मतलब आमदनी का जरिया पैदा कर लिया, ठीक है ना। तो इस पूरी व्यवस्था में अगर ये व्यवस्था इसी तरीके से माहौल बनता रहा तो जो 20 लाख लोग पूरे देश में 20 लाख लोग चमड़ा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उस 20 लाख लोगों में 99% दलित है।
अच्छा,
ठीक है ना, जूता बनाने में जो भी उसका काम है, प्रोसेसिंग में, टैनिंग में, जो वो सारा दलित लोग कर रहे हैं। तो 20 लाख दलित,
मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। शीशे के उस पार बैठे स्टूडियो मैनेजर देवाशीष कुमार इशारा कर रहे हैं कि कई श्रोता कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। जी बताएं इस वक्त कौन श्रोता हमारे साथ हैं।
सर, मैं गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से तैयब आजाद बात कर रही
जी
हूं।
बताएं अपनी बात रखें।
सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूपी की बहुमत भाजपा को मिली है।
आपसे एक गुजारिश है कि आपके पीछे रेडियो चल रहा है उसका वॉल्यूम कम कर दें, आपकी ही आवाज लौट कर सुनाई दे रही है।
यस सर।
और फिर अपनी बात रखें।
सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूपी की बहुमत भाजपा को दी है, तो भाजपा को सिर्फ धर्म निरपेक्ष के लिए तो नहीं दी है। गाय का मांस रोकना, ये किस कैटेगरी में आता है? गाय का मांस का रोकना क्यों?
नहीं नहीं, गाय के मांस की तो यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश में तो
पूरे देश में
ये एक अलग है लगता है,
गाय के मांस पे पूरे देश में प्रतिबंध है, लेकिन गाय के मांस के अच्छा बच्चा है उसको भी आइडिया नहीं।
कोई बात नहीं, हम देखते हैं और कौन श्रोता हमारे साथ इस समय लाइन पर है। हेलो
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
जी सर, मैं इंद्रसेन पांडे बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, यूपी से। आपसे
पांडे जी रखें अपनी बात।
सर जैसा कि आपने आज का विषय रखा है बुचर खाने वाला, उसमें जो सरकार का निर्णय है उसका मैं संपूर्ण समर्थन करता हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य समाज या देश हित में तभी होता है जब कानूनी और वैधानिक तरीके से हो
जी।
और जो गलत तरीके से बुचर खाने चलते हैं उसको सरकार को अतिशीघ्र ही बंद कर देना चाहिए।
पांडे जी आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई, और कौन श्रोता है इस समय? आगे बढ़ते हैं, श्रोता लगता है फिर कुछ तकनीकी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश में भैंस का मांस गैर कानूनी नहीं है, गाय काटना जुर्म है, लेकिन तो गौमांस पर पाबंदी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी आती है निकलकर, अक्सर हम पढ़ते रहते हैं अखबारों में, तमाम खबरों में आता है कि गौमांस पर पाबंदी की आड़ में उन लोगों पर भी मार पड़ती है जो भैंस या बकरे का कारोबार करते हैं। लाइसेंस नहीं मिलते, ज़रूरतमंदों को और नौकरशाही परेशान करती है। विजय बहादुर पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्या कहेंगे? आपकी सरकार लाइसेंस देगी उन ज़रूरतमंदों को जिनकी दुकान बंद कराकर आपकी सरकार ने एक तरह से उनके पेट पे लात मार दी है?
देखिए, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आप परिचर्चा कर रहे हैं, और जिस तरह की आपकी रीच है, आपकी पूरे देश में रीच है, पूरे समाज में रीच है, इसलिए आदरणीय प्रोफेसर साहब भी आपके साथ बैठे हैं, कम से कम तथ्यों को ठीक से परोसा जाना चाहिए। नंबर एक तो आप बताइए, किसी राज्य में अभी जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो उन बूचड़ खानों पर कर रही है जिन पे अवैध रूप से जो पशु कटान हो रही थी? क्या कोई भी सभ्य समाज ऐसे किसी पशु कटान के कारखाने को, किसी कत्ल खाने को या अनुमति देता है कि अवैध रूप से वो पशु कटान करे?
दिल्ली से सटे पाठक जी, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हमने देखा है, और बाकी जगहों से ऐसी खबरें आई हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे जो सड़क के किनारे रिहायशी इलाकों में अपना पेट पालने के लिए इस तरह की छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, उनकी दुकानें भी पिछले 3-4 दिनों में बंद करा दी गई है, कि ये कहकर कि उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को लाइसेंस मिले और वो अपना काम धंधा रोजी रोटी ठीक तरीके से कर पाएं? इसकी दिशा में आपकी सरकार कोई पहल करेगी?
मैंने आपको स्पष्ट किया और मुझे लगता है कि आपकी तरफ से भी स्पष्टता होनी चाहिए कि राज्य की पुलिस के संरक्षण में ऐसे बूचड़ खाने जो चल रहे थे, जिनको राज्य के राजनीतिक नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त था, जिसकी वजह से पुलिस की जो व्यवस्था थी वो पंगु थी, हमने उससे राजनीतिक हस्तक्षेप हटाया, और ये जो मूल काम है उनका, क्योंकि यह कोई भी समाज या कोई भी सरकार ये नहीं कहती है कि जो ऐसे काम जो राज्य में अवैध हो चले। हमने ये कहा कि हम आपको राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करते हैं, जो भी अवैध काम कारोबार है उन्हें रोके जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
एक बात और बताइए पाठक जी, एक बात और बताइए कि उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी ये बात उतनी ही लागू होती है कि हर समुदाय के लोग मांस खाते हैं, लेकिन मांस खाने ना खाने के पीछे कई बार सवाल खड़ा होता है संस्कृति का, स्वीकारोक्ति का, पवित्रता का, और इस तरह की तमाम बातें होती हैं। अधिकतर मुसलमान खेती किसानी के अलावा मांस के कारोबार में लगे हैं, और ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक भी टिकट नहीं दिया, और आपको 403 सीटों में से 312 सीटें मिली, प्रचंड बहुमत मिला, भव्य जीत हुई, और ये संदेश भी गया कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के वोट की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हीं मुसलमानों को उनके व्यवसाय से दूर किया जा रहा है, एक तरह से जो उनका पुश्तैनी धंधा है। क्या ये अल्पसंख्यकों को अलग थलग करने जैसा कदम नहीं है? क्या ये संदेश जाने अनजाने नहीं जाता है?
देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप विषय लेकर के आए, राज्य में अवैध रूप से जो चल रहे बूचड़ खाने हैं उन पर चर्चा के
सारी चीजें।
पाठक जी, मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा सर। पाठक जी नमस्कार,
आपके साथ जो प्रोफेसर साहब हैं वो आज चले आए दलित पर।
हाँ जी पाठक साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ सर।
आप पहले
ये तो मान के चलिए कि मैं ठीक बोलूंगा।
नहीं नहीं नहीं, आप ठीक मेरी बात सुनिए। देखिए वैध और अवैध जो बात आप कह रहे हैं, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो है का जो जो अपेडा है वो मीट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस देता है, और इस देश में जो मांस का जो प्रयोग है वो मुस्लिम समाज बहुत समय से करता आ रहा है। ये मीट आप एक काम कीजिए ना, ये वैध अवैध बुचड़ खानों को बंद करने से ज्यादा बढ़िया है कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप मीट एक्सपोर्ट को बंद कराइए ना।
यही दिक्कत है ना,
आप गलत जगह जा रहे हैं। देखिए रोजमर्रा की जो लोगों की जरूरतें हैं, आप उसके अवैध वैध और अवैध के नाम पर पे, ये इससे ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप भारत सरकार को ये लिखवाइए, मोदी जी को ये समझाइए कि आप मीट एक्सपोर्ट को बंद कर दीजिए।
इस पूरी चर्चा के बीच हम चल रहे हैं अपने श्रोताओं के पास, देखते हैं 1811-7000 और 1811-7001 पर कौन श्रोता इस समय हमारे साथ हैं।
हेलो
जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
मैं बरेली से बोल रहा हूँ, सबीउद्दीन
जी। बरेली से रखें अपनी बात।
ये बूचड़ खाने बंद कराए हैं इन्होंने, मतलब पहले तो इन्होंने ये कहा था कि हम वैध अवैध सब बंद करेंगे, इन्होंने बंद कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि हम अवैध बंद करेंगे, अवैध तो ऑलरेडी पहले से ही बंद थे, उसकी आड़ में इन्होंने वैध भी बंद कर दिए हैं। इतना यहाँ पे बेरोजगारी हो गई है और बहुत ज्यादा परेशान है, हर वर्ग परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं काम करते हैं वो भी परेशान हैं। आखिरकार बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग मुस्लिमों को परेशान क्यों कर रहे हैं आखिरकार? दूसरी बात, अगर उनको गोश्त का कारोबार ही बंद करना है, एक्सपोर्ट बंद कर दें, जो केंद्र में 3 साल से बैठी हुई सरकार है। नंबर तीसरी बात, अगर हमारी हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो बूजड़ खाना है वो है, तो हम लोगों की आस्था का भी केंद्र बिंदु शराब है और नशे से जुड़े हुए जितने भी कारोबार है उसको भी तत्काल प्रभाव से बिल्कुल पूर्णतया प्रतिबंध लगा दें, तब तो हम मानेंगे कि सबका साथ सबका विकास वाली बात हो रही है।
जी बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम में अपनी बात रखी। और कौन श्रोता है हमारे साथ इस समय?
हेलो सर, मोहम्मद सईद बोल रहे हैं जी, ग्राम पंचायत अस्थाना जिला से।
जी रखें अपनी बात।
मेरा सवाल सर ये है कि ये बताते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कितने पेड़ बूचड़ खाने चल रहे हैं?
आपकी बात ठीक से हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगले श्रोता के पास चलेंगे। कौन साहब बोल रहे हैं? कौन श्रोता हमारे साथ इस समय लाइन पर मौजूद है?
आदि कुशवाहा।
जी कुशवाहा साहब स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
योगी जी ने बहुत काम किया है।
अच्छा, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। और कौन श्रोता है हमारे साथ इस वक्त? अच्छा, तो प्रोफेसर साहब और विजय बहादुर जी दोनों एक बात और बताइए, और मैं दोनों से ही पूछ रहा हूँ और दोनों से आपके राय जानना चाहूँगा कि ये अवैध बूचड़ खानों को बंद करने की बात हो या फिर ये जो ऑपरेशन रोमियो मंचनलों को पकड़ने के लिए, क्या ये कुछ कुछ वैसा नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बजरंग दल वाले या विश्व हिंदू परिषद वाले करते थे, जिसे अंग्रेजी में विजिलेंटी टाइप एक्शन आप कह सकते हैं, जिसे अब कानून की शक्ल में ढालकर लागू कराया जा रहा है? जो काम पहले बजरंग दल करता था वही काम अब स्टेट कर रहा है, तो फर्क क्या नजर आता है आपको इसमें?
पहले मैं उत्तर दूंगी, पहले प्रोफेसर उत्तर दूंगी।
आप दे लीजिए।
देखिए पहली चीज तो इसको संशोधन करिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था और अभी जो राज्य की पुलिस ये कर रही कि रोज उत्तर प्रदेश में अवैध पशु कटान हो रही थी, जो अवैध तरीके से हो रही थी उनके बारे में ये कहा गया, जो पुलिस की संरक्षण में चल रहे थे उनको रोकने के लिए कहा गया, वो हो रही है एक बात। दूसरी बात, आप इस बात से देख गए हैं और कम से कम मैं आप सब लोग समाचारों के प्रति इतने सचेष्ट हैं और प्रोफेसर साहब तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, वो जानते हैं कि कवाल का जो बवाल हुआ
जिसकी
वजह से पूरा मुजफ्फरनगर हुआ, उसमें मूल जड़ में जो घटना थी वो बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी। बरेली में बेटियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि जिन रास्तों से वो बेटियां जाती थी वहां पर सोहदे उन्हें छेड़ते थे। तमाम ऐसी जगहों पर घटनाएं हुई हैं और जाहिर बात है पुलिस को यह व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी कि मेरी बेटियां मेरी बहनें स्वच्छंदता से अपने विद्यालय जा सकें और आ सकें। इस दिशा में जो भी प्रयास होना चाहिए वो पुलिस को संदेश है कि किसी को छोड़े छेड़े न, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे छोड़े बिना कानून का राज स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हम उसी उत्तर प्रदेश में हैं जिसमें डर लगता था कि हम हाईवे से अपने परिवार को ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, अभी अभी तो कम है, यह निश्चित समझिए उत्तर प्रदेश में जो जो अवैध काम हो रहे हैं उनके बंद होने के रास्ते खुले हैं, वो बंद होंगे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा, आम जन निर्द्वंद होकर रह सके, उत्तर प्रदेश विकास की ओर जाए, हमारा ये प्रयास है।
जी विजय बहादुर पाठक जी, आपकी इस बात पर प्रोफेसर सतीश प्रकाश आप कुछ जोड़ना चाहेंगे?
पाठक जी, मैं आपकी इस बात का तो स्वागत करता हूँ। चलिए, खैर आप ये अच्छा कर रहे हैं, बेटी तो चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो या किसी की भी हो, है ना, बेटी बेटी है और उसकी सुरक्षा की बात हमको सबको करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये सौहदों के नाम पर जो है एक वर्ग विशेष का जो अतिक्रमण हो रहा है, ठीक है ना, ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत समय से हो रहा है और हजारों साल से आ रहा है कि गरीब आदमी की बेटियों को जो है बड़े बड़े गाँव में, अब किसी भी गाँव में आप जाएंगे तो आज भी दबंग जो है, दबंग की कोई जाति नहीं होती, दबंग का कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन गरीब महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की
आवश्यकता है। प्रोफेसर साहब, आपको यहाँ रोकेंगे, कुछ श्रोता टेलीफोन लाइन पे हमसे जुड़ रहे हैं। कौन साहब बोल रहे हैं?
जी, मैं मोहम्मद आरिफ खान।
मोहम्मद आरिफ साहब, स्वागत है आपका, रखे अपनी बात, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ।
जी, कोलकाता से बहुत स्वागत है आपका, बताएं।
जी, मेरा कहना यह था कि योगी जी ने जो एंटी रोमियो दल बनाया, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये चीज कोलकाता में भी देखने को मिलता है, मैं बिहार भी जाता हूँ, यूपी भी जाता हूँ, ये चीज सारा चीज जगह देखने को मिलता है। बहुत से मनचले लड़के बाहर खड़े रहते हैं स्कूल के बाहर लंच छुट्टी के टाइम, लेकिन उतना ही विरोध मैं उस बात का करता हूँ जो उन्होंने मतलब कि इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया, लेटर हाउस को बंद करके। मेरा कहना यह है कि कोई सहूलत पैदा करे, कोई सहूलत बनाए, और जो मतलब गैर लाइसेंसी जो दुकानदार थे वो चरखाने थे, उनको फिर से रोजगार का मौका दिया जाए।
जी, आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई। विजय बहादुर जी, आपने भी सुना होगा, आपकी सरकार ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या कुछ पहल करने जा रही है, कुछ बता पाएंगे आप?
राज्य में रोजगार का सृजन हो, हम उस दिशा में काम करेंगे, लेकिन राज्य में अवैध खनन हो, अवैध पशु घर कट्टी खाने चलें, यह तो कदाचित उचित नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि रोजी रोजगार का काम होना चाहिए, उस दिशा में सरकार प्रयास करेगी।
बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।
तहत उसके पीछे कुछ तथाकथित लोग जो एक वर्ग विशेष और इस तरह की बात करते हैं, मैं इससे असहमत हूँ।
विजय बहादुर जी, आपकी बात पहुंची। कुछ मैं टिप्पणियां सोशल मीडिया से लेता चलूं, अवैध भूषण खानों से जुड़े इस इंडिया बोल के मुद्दे पर फेसबुक पर लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी बात रखी है। कर्नल प्रशांत कुमार विश्वास लिखते हैं कि इस मुद्दे को पर्यावरण से जोड़कर देखना सही नहीं होगा क्या? क्या इसे धार्मिक रंग देना ज़रूरी है? सवाल उठा रहे हैं। चरणजीत कुमार अरोड़ा लिखते हैं कि सरकार ने जब लॉटरी बैन की थी तब भी लोगों ने चिंता जताई थी और इस पेशे से जुड़े लोगों के रोजगार का क्या होगा, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो गया। इन्हें लगता है कि अवैध भूषणखानों से जो लोग जुड़े हैं उनका भी कुछ ना कुछ निकल आएगा हल। निसार आलम लिखते हैं कि योगी सरकार रोजगार के कितने अवसर लेकर आई है, इस बारे में कुछ ठोस बताएं। नई सरकार ने रोजगार छीनने से अपने कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। एक और पाठक हैं, बीबीसी के श्रोता हैं हमारे, जसबीर सिंह, ये लिखते हैं कि क्या बूढ़ा मवेशी बेचने पर भी कोई कानून है? सरकार इस बारे में कुछ कार्रवाई करेगी? काटे तो वही जानवर जा रहे हैं जो कहीं से बेचे जाते हैं। इसी तरह सचिन प्रताप लिखते हैं कि भूषणखानों पर रोने वालों में उन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो कुछ दिन पहले जल्ली कट्टू करवाने के लिए आंसू बहा रहे थे, क्या इसमें कोई धार्मिक रुख नहीं है? एक आखिरी टिप्पणी लेंगे, सौरभ कुमार लिखते हैं कि शराबबंदी से बिहार के रोजगार पर कितना फर्क पड़ा, ये जानकारी साझा की जानी चाहिए। क्या भूषणखानों पर लगा प्रतिबंध उस प्रतिबंध से किसी तरह अलग है? कई सवाल हैं जिनके जवाब हम आधे घंटे में नहीं ढूंढ सकते। घड़ी की सुइया अब इजाज़त नहीं दे रही हैं और कह रही हैं कि इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय बहादुर जी और यहां दिल्ली स्टूडियो में मौजूद प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, आप दोनों का शुक्रिया, और शुक्रिया उन तमाम श्रोताओं का जिन्होंने हमें सुना, कार्यक्रम में अपनी बात रखी। और इसके साथ ही मैं उन तमाम श्रोताओं से माफ़ी चाहूँगा जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन हम उन्हें शामिल नहीं कर पाए। अगले शनिवार एक और ज्वलंत विषय पर फिर मुलाकात होगी। बीबीसी इंडिया बोल में नमस्कार।